फरमाए वला जनाह अलैकुम, और तुम पर इस मामले में कोई गुनाह नहीं। फीमा अरदतुम बिही मिन खितबतिन निसा, कि तुम औरतों के साथ निकाह का इरादा पेश करो। अच्छा ठीक है, वला जुनाह अलैकुम, नहीं गुना, जुनाह के लिए उसको आप समझ गए, जनाह तुम पर, कौन तुम पर, लिखिए वो मर्द जो किसी बेवा औरत से निकाह करने का इरादा रखते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत मारूफ है कि जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर गिरते हैं। जिनके घरों में बच्चियां होती हैं ना, तो उधर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, इस पर कोई बुरा नहीं मानने की जरूरत होती। वो बाबा जी जिनका मैं सदका जारिया हमेशा ही आपको बताती हूँ, वो एक बाबा ना आता तो मैं हो सकता है आप सबको पढ़ाने के काबिल ना आती। वो बहुत ही हमारे घर में देर तक रहा और वो एक कहा करता था पंजाबी में जुमला, कहता था किसे कोलो साग मंगया तो या लस्सी मंगी एक बराबर, होए कोल तो अगला ना नहीं करता तो जे ना मिले तो बुरा नहीं मानता। यानी लस्सी मांगने चले जाओ ना आपके घर लस्सी है तो होती है तो अगला खुशी से दे देता है, ना हो तो मना नहीं करता। इसी तरह साक मिन रिश्ता, आपके घर बेटी है, कोई आपसे आके कहता है आपकी बेटी से मैं अपने बेटे का रिश्ता करूं, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, देनी है दे दीजिए, नहीं देनी तो माजरत कर लीजिए, ये मतलब है। तो अब ये है कि जब एक औरत बेवा होती है, किसी भी सोसाइटी में आप देखिए कि खानदानों के थ्रू हमें पता चल जाता है किसके मर्द की डेथ हो गई, किसकी बीवी की डेथ हो गई, ये फितरत का असूल है। और मैं कहती हूँ कि एक घर उजड़ता है ना तो एक घर बसता है, ये ऊपर के फैसले होते हैं। आपको चोट बड़ी गहरी लगती है लेकिन बाद में उसमें खैर होती है। एक मर्द के लिए बीवी की मौत बहुत सदमे की बात है, लेकिन कितनी, ये मैं अब आपको अपने खानदान की कहानी सुना देती हूँ। हमारे जो ससुराली कल्चर है तो वो कहते हैं कि बीवी की मौत शौहर के लिए कोहनी की चोट है। ये कोहनी, एकदम आपकी कोहनी लगेगी ना दीवार को चीख निकल जाती है और अगले ही इस मिनट में ठीक भी हो जाती है। मर्द बहुत जल्दी संभल जाते हैं। ये जो एक हिकमत आपने नहीं पूछा तो मैं खुद ही बता दूं कि औरत को तो 4 महीने 10 दिन रोक लिए, तो देखो देखो कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, तौबा तौबा, ये मुसलमान तो ऐसे हैं वैसे हैं। और मर्द को क्या कहा कि एक बीवी के मरने पे क्या वो भी 4 महीने 10 दिन सोख करे, शादी ना करे, जेबो जीनत ना करे? नहीं, सिर्फ तीन दिन के बाद अगर एक मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो आप उसको गुनागार और न जाने वो जो बेकार किस्म के लफ्ज हमारे कल्चर में बोले जाते हैं वो नहीं बोलेंगे कि तो पहले इंतजार कर रहे थे और इनकी तो पहले ही नीयतें थी, इरादें थी। इस्लाम को मानना आज के दौर में ना मानने की निस्बत बहुत मुश्किल है। जो ऐसी बात कर ले जो अल्लाह का हुक्म है वो लोग उसको बुरा कह देंगे और जो अपोजिट कह दे लोग उसको बड़ा अच्छा कह देंगे। तो एक मर्द 3 दिन के बाद क्यों कर सकता है, वजह मैं आपको लिखाती हूँ, अब लिख लें फिर ही अगली आयत पे पहुंचते हैं। अब देखिए कि औरत के मिजाज में ठहराओ और सब्र और मल्टीटास्किंग होना है। अल्लाह ताला किसी को भी इस चोट में ना डाले, शौहर की मौत बहुत बड़ी मौत होती है, लेकिन आप देखेंगे कि एक माँ 4 बच्चों को लेकर बेवगी की मुद्दत गुजार लेगी, पाल भी लेगी, खिला भी लेगी, फिर फी जमाना हमारे कल्चर में बेवा औरत की टेक केयर करने के लिए बाहर के काम करने वाले बहुत सारे लोग हाजिर होते हैं। कोई बच्चों का मामू है, चचा है, दादा है, नाना है, वो ग्रोसरी भी ला देगा। औरत घर में बैठी रहती है, बच्चों को खिलाती पिलाती पढ़ाती लिखाती है, उसका वक्त गुजर जाता है। बट ऑपोजिट, एक मर्द घर नहीं चला सकता। अगर आप इस मसले को जो मैं भी बताना चाह रही हूँ समझ गए ना, तो आपको आज के वेस्टर्न लाइफस्टाइल पे भी बहुत गहरी तनकीद नजर आएगी जो लामहला आ रही है। फितरत चाहती है कि औरत घर में रहे और घर के अपने मामलात को देखे और बच्चों को पाले और उनकी परवरिश करे। औरत कोई ऐसा काम ना करे कि जिसकी वजह से उसकी घरदारी मुतासिर हो। अब ये अलग बात है कि घर रह के भी कोई नहीं कुछ करती कुछ, और कई बाहर जाकर भी माशाल्लाह बहुत कुछ कर लेती हैं, फिर घर भी ठीक रख लेती हैं, लेकिन सिंपल बात कर रही हूँ विदाउट एनी कमेंट। मर्द घर नहीं चला सकता, ये पक्की बात है कि शौहर फौत हो जाए तो बीवी का या माँ का बच्चों के साथ घर चलता रहता है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो आता है ना बेवगी के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। माली तौर पे मर्द कमा रहा था, कमाई का जरिया खत्म हो गया, एक लगी बंदी पे आ रही थी, कारोबार था, शराकत थी, कुछ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे कल्चर में बेवाओं पे यतीमों पे खर्च करने का बहुत रुझान है। खानदान के लोग भी करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं, और जहां भी आप होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे वो काम होता है। फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करना बहुत ईजी है, हो जाता है, बट किसी की बीवी के मरने के बाद 3 टाइम जाकर उसके घर में खाना पकाना, सफाई कराना, कपड़े धोना, समेटना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मर्द बीवी के बगैर नहीं रह सकता, बीवी मर्द के बगैर रह लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अज़वाजे मुतहरात तकरीबन 30, 40 साल, 50 साल तक भी जिंदा रहीं, और उनको तो आगे से शादी भी नहीं करनी थी, रह सकती थी तो रह गई, मर्द नहीं रह सकते। इसलिए मैं आप सबको एक छोटी सी बात कहूं, कुरान के तालिब इल्म होने के नाते हम सब का ये फर्ज है, हमारे खानदानों में, हमारे मिलने जुलने वालों में, इर्द गिर्द में, जहां किसी की डेथ की खबर आए, किसी भी उम्र का हिस्सा हो, आप उनके दूसरे निकाह की फिक्र करें। मर्द है तो चौथे ही दिन उसको सजेशन दे दें कि फुलां भी हो सकता है, फुलां भी, आप उधर सोच लें, उधर देख लें, और औरत है तो उसका क्या मामला है, ये कुरान आपको मुझे देता है। अब आप देखिए कि अब जो औरत इद्दत में, अब आप बिल्कुल इमेजिनेशन में लाएं, क्योंकि इस एक आयत को समझने के लिए बहुत जरा तवज्जो चाहिए होती है। इससे बहुत सारे लोगों ने अफेयर्स भी जायज कर दिए और कहा कि देखो इस्लाम तो खुद कह रहा है कि तुम इद्दत में मिलजुल लिया करो और मोहब्बत की बातें कर लो, ये कर लो, वो करो, तो मैं चाहूंगी कि इसके भी लफ्जों तक ही रहूं। वला जुनाह अलैकुम, नहीं गुना तुम पर, किन पर, वो मर्द जो किसी बेवा से निकाह का इरादा रखते हैं, फीमा अरद तुम भी, इस मामले में कि तुम पेश करो उसको, मिन खितबत निसा, पैगाम निकाह का, या औ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या तुम छुपा दो उसको अपने नफ्सों में, क्या पता चला, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इसमें के किनाये और इशारे में जाहिर कर दो इन औरतों से निकाह का पैगाम, या पोशीदा रखो अपने दिलों में, क्यों, इसलिए कि आलिम अल्लाहु अन्नकुम सतस्कुरूनहुन्ना, अल्लाह खूब जानता है कि तुम जरूर इन औरतों का जिक्र करोगे। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला दिलों तक झांक लेते हैं, अल्लाह को पता है एक औरत बेवा हो गई है, अब कई मर्द उसके बारे में सोच रहे हैं। अब ये कैसे ख्याल आता है, क्या किसी औरत को जाहिर ही देखा होता है, नहीं, सुना भी हो सकता है, उसके तस्करे सुने होते हैं, ख्याल आ सकता है, कोई नेकी की नीयत से कहता है कि चलो मुझे एक बेवा औरत की मदद करनी है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ख्याल आ सकता है, ये फितरत का कानून है, यहां तक ठीक है, इसमें गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन वला किल्ला तुआ इदू हुन्न सिर्रन, लेकिन इनसे निकाह का वादा ना करो छुप कर, ढकी छुपी दोस्तियां ना हो। अब नोट कीजिएगा जरा, या फिर मैं जरा सा शऊर को बेदार करने के लिए कुछ कड़वे जुमले बोलना चाहती हूं। वो औरत जिसका शौहर नहीं रहा, बेवा है, जरूरत पूरी नहीं हो रही ना, वो लोनली है, अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करती है, उसके बारे में भी अल्लाह ताला किसी मर्द को इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम उसके साथ बैठकर ढकी छुपी बातें कर लो। आज जितने अफेयर्स चलते हैं ना, आपको पता है लोग जेन्युइन किसको कहते हैं, कहते हैं क्यों अफेयर है, शादी करना चाहते हैं, जायज है, हमको फ्लर्ट थोड़ी कर रहे हैं, यस वी आर सीरियस। भाई सीरियस हैं तो फिर सीरियस होके तरीके से आए, यानी मैंने यंग लड़के लड़कियों के बारे में भी, और इवन मैरिड कपल्स या मैरिड लोगों के जो अफेयर्स हैं, इतनी दीदा दिलेरी होती है, शैतान गुनाह पे इस तरह माइल कर देता है, कहता है देखो हमको झूठ बोल रहे हैं, फ्लर्ट तो ये तब होता जब हमने शादी नहीं करनी। तो भाई ये फ्लर्ट आप किससे कर रही थी, जब आप किससे कर रहे थे, आप अपने शौहर से फ्लर्ट कर रहे हैं। देखिए लिखिए एक बात, एक कंवारी लड़की जब फ्लर्ट करती है ना, एक कंवारी अनमैरिड लड़की, वो उस मर्द से कर रही होती है जिससे वो ब्याहना चाहती है अपने आप को। मैरिड औरत जब फ्लर्ट करती है ना, वो उससे नहीं कर रही होती जिससे उसकी दोस्ती हो गई, ये वो अपने शौहर से कर रही है, धोखा दे रही है। और मैं हैरान होती हूँ शैतान किस तरह बात करता है, यानी किसी की बात जो सच्ची बात है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि शैतान किस तरह सामने आता है। एक औरत मैरिड और मर्द भी मैरिड, और वो मर्द उसके साथ फ्लर्ट करता है फोन के जरिए, और उसको कहता है देख तू मेरे पास नहीं है ना, इसलिए आज मुझे फलां औरत के पास जाना पड़ा। तो भाई ये जुमला तुम अपनी बीवी को बोलो, बीवी अलग है कहीं और, महबूबा कहीं और है, और महबूबा को फोन पे आर देता है कि तू मेरे पास होती तो आज मैं फलां लड़की को अपने पास ना बुलाता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये सब मुसलमान, इसमें कोई गोरा नहीं है, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैंने गलत बात कही हो। यानी मैं हैरान, मैंने कहा ये जुमला जिस मर्द ने तुमसे अगर बोला है और तुम उसकी क्या लगती हो, तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया और तुम अपना क्यों नहीं तोड़ती कि तुम एक मर्द को इतनी जुर्रत दो के तुमसे ऐसी बात करे। लेकिन शैतान ऐसी बातें करता है। यहां देखिए फौत हो गया मर्द, सब्र कीजिए, अल्लाह ने आपको वक्त दिया, आप ढकी छुपे बातें नहीं कर सकते। ला तुवाइदु, और तुवाइदु वही है जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, मुआशरा, मुकाबला, मनाजरा, दो का एक दूसरे को उम्मीद दिलाना। एक होता है मर्द सिर्फ कह रहा होता है, इसमें क्या दोनों कह रहे हैं, ये मुराद है। ढकी छुपी, इसी को आप आगे जाके सूरत निसा में पढ़ेंगे अखदान कहते हैं, खिदन, छुपी यारियां। पहले लोग यारी दोस्ती कहते थे छुपी, आज इसको कुछ और नाम दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ फिर करो क्या, इल्ला अन तकूलू कौलम मारूफा, हाँ मगर बात करो तो मारूफ तरीके से करो, सीधी बात, इशारतन बात कर दो। वो कौन सी होती है, ढकी छुपी। मतलब मिसाल है किसी की बेटी बेवा हो गई या किसी की और भी हालात है, बड़ी औरत भी हो सकती है, जब आप कहीं निकाह करने लगे तो पूछ लीजिएगा कोई इंटरेस्टेड है, अच्छा आप ये कहीं किसी से हाँ करने से पहले मुझसे भी पूछ ले। यानी ऐसा इशारा जिससे अगले को लगे कि चले कोई उम्मीद है या इनके है, लेकिन फिर भी खुले आम बात नहीं कर सकते क्या। वला ताजिम उकदतन निकाह, निकाह की गिरा नहीं पक्की कर सकते, मत बांधो गिरा निकाह की, यानी इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता। कब तक, हत्ता यबलुगल किताब वजलहु, यहां तक के अल्लाह का लिखा हुआ यानी कानून शरीयत अपनी मुद्दत को ना पहुंच जाए, मुराद ये कि इद्दत पूरी हो जाए, 4 माह 10 दिन हो जाए। वालम अन्नल्लाह यालमु मा फी अन्फुसिकुम, बस खूब जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो तुम्हारे सीनों में है, तुम्हारे नफ्सों में है। फख्ज़रूहु, बस उससे डरो, किससे डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। अब अल्लाह से डरने से मुराद क्या होता है कि अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह सुब्हाना ताला तो अपनी जात के साथ बड़े गफूर और रहीम है, लेकिन जब इंसान गलत काम करके अल्लाह को गुस्सा दिलाता है तो फिर उसके वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी पकड़ से डर जाओ। और वालम अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और खूब जान लो कि अल्लाह ताला खूब बख्शने वाले और तहम्मुल वाले हैं। अब आपको ये बात अपने मफहूम के एतबार से तो समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें यानी अगर आप देखें तो बात बिल्कुल वाज़ह है। थोड़ा सा आपको अब इसके अल्फाज के अंदर ले जाती हूँ, जो नए लफ्ज हैं सिर्फ वही करूंगी क्योंकि जो पहले हो चुके होते हैं उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए कि वला जुनाह अलैकुम फीमा अरदतुम, लफ्ज अरदतुम को देखिए, क्या आपने कभी ये लफ्ज पीछे पढ़ा, व अरदहुम अलल मलाइकति वल्लम आदम अलस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, वही लफ्ज है यहां भी। अरदा के मानी होते हैं किसी चीज का जाहिर हो जाना या किसी के सामने कुछ पेश करना। अरदर रकदन कहते, ऐसा माजरा पेश आया, सरसरी तौर पर कोई चीज नजर आई। इसी तरह से आप देखिए कि पेश करने के लिए भी अरबी में और लफ्ज है, लेकिन यहां अरदा का लफ्ज है ना, ये बहुत ही ज्यादा जुमानी लफ्ज है, अच्छे खूबसूरत तरीके से अपना अमल पेश कर रहा है। आगे जाकर आप पढ़ेंगे अल आरिद आएगा, कौमे आद पे जो बादल आया था उसके लिए आरिस कहते हैं, वो बादल जो उफक पर फैला हुआ हो। अच्छा अरस किसको कहते हैं, कपड़े का अरस कितना है, चुड़ाई को कहते हैं, वही लफ्ज है ये भी, किसी चुड़ाई को। जन्नत के लिए आप पढ़ेंगे सूरत आल इमरान में, अगली ही सूरत में आएगा कि जन्नत की चुड़ाई जो है वो इसी से, इसी से लफ्ज एराज भी है, मुंह फेर लेना, ठीक है पीछे कर लेना। एतराज लफ्ज भी इसी से, जब किसी चीज पर हम एतराज करते हैं तो उसका रास्ता रोक लेते हैं ना, इसी तरह से अरदु कहते हैं घर के सामान को, अरदुल हयात दुनिया। सूरत अल अराफ में पढ़ेंगे फयाखून अरद हाज़िहिल अदना, तो यहां अल्लाह सुबहान तला ने पेश करने को कहा। जैसे उर्दू में आपको याद है बचपन में स्कूल से छुट्टी करते थे तो क्या पेश करते थे, अर्जी, ये वही अर्जी है, अर्जी, और वो पूरा एक जुमला होता था, बड़ी मोदबाना बहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, ये मोदबाना गुजारिश है, वो कितना अच्छा था, उसे एक टैक्स से आई एम नॉट कमिंग, मत पूछो क्यों नहीं आना, कोई हक नहीं है पूछने का, और ये लिख दिया भी तो बड़ी बात कर दी हमने तमाम से कि जी बता नहीं दिया हम नहीं आ रहे, वैसे तो आपको खुद ही पता लग ही जाना था क्लास में कि कोई नहीं आ रहे। यहां से आप देखिए कि वक्त के साथ साथ तरजीहात बदलती जा रही है। खैर अगला लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, वो है मिन खितबा। देखिए खा तो ए बा इसका रूट है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स आप पढ़ते हैं। खतबू कहते हैं बात और मसले को, छोटा हो या बड़ा, जल्लल खतबू, बात बड़ी हो गई, जैसे हम कहते हैं ना बात फैल गई। फिर इसी तरह से आप देखिए कि काला मा खतबू कुन्ना, सूरह यूसुफ में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुतबा करते हैं जुम्मे का खुतबा, ख्वाब पेश कर दें तो खुतबा, जुम्मे का खुतबा, ईद का खुतबा, नमाज का खुतबा, ठीक है, लेकिन ख्वाब पे जेर डाल दें जैसे कि यहां डली हुई है, तो खितबा कहते हैं मंगनी को। जी मंगनी क्या? अब वो मंगनी नहीं जिसको इंगेजमेंट और रिंग और इधर उधर की बातें और जोड़े और कपड़े, और वो जो कल ये कह रही थी कि मंगनी तो जरूर करनी चाहिए। मंगनी क्या होती है कि मांग लिया, मंगनी मांगने से ही है। उर्दू में वो कहते हैं ना, मैं आपसे मांगता हूं, हम आपकी बेटी आपसे मांगते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां लफ्ज मंगनी क्या है कि किसी से रिश्ता मांग लिया, बात हो गई, ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इसको एलैबोरेटेड मंगनी कहना और फिर वो बड़े से होटल में उसके लिए इहतमाम करना और सारे शहर को मसले में डालना और तोहफे देने भी और लेने भी, ये करना, इसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं है। खतीबा कहते हैं मंगेतर को, खतीबा में और आम औरत में कोई फर्क नहीं होता। हमारे कल्चर में क्या मंगनी हो गई है जी, आप तो खाना खाने जा सकते हैं ना, आप तो वो जरा एक दूसरे को समझ बूझ रहे हैं ना, पता चल जाए। अब आप सोचिए, एक लड़की को पता है मेरी कल इससे शादी होनी है, फिलफर्स उसके अपने मंगेतर के सब बेतकल्लुफ होने या उसको इजाजत देने में ज्यादा आसानी होगी एक गैर लड़की लड़का बैठ के बातें कर रहे होंगे जिनको पकड़े जाने का बड़ा डर है। आज के दौर में ये एक पेरेंट्स ने जो एक खुली छुट्टी दे दी है ना मां बच्चों को कि ये तो मंगेतर है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रिश्ता करने के वक्त आप देख ले या दिखा दे, यस या नो उसके बाद होगा, बात समझे। रिश्ता देखा हुआ है लड़के ने लड़की को, यानी अगर आप दिखाना चाहें दिखाइए, बात कर सकते हैं एक दूसरे के, मिलानात रुझानात पूछ सकते हैं। बाप ने कह दिया ठीक है मुझे मंजूर है, यस हो गया अब भी नहीं, और नो हो गया फिर तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद लड़की लड़के, अब तो अल्लाह माफ करे बच्चे तक लोग पहले प्लान कर लेते हैं, वल्लाही होंगे कि नहीं, कितने होंगे, रहेंगे कहाँ, घर किधर होगा, ये होगा सामान, कट्ठी शादियों की जा जाके लड़की लड़के तैयारियां करते हैं। इससे भी ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो सकती है? और वो कहते हैं ना कि जो ना खूब था वो खूब हुआ। माँ बाप से कोई पूछे कहते जी मंगनी हुई भी है, खुद बेटी को साथ आपके फोन करके लेने आ रहा हूं, माँ बाप के सामने बेटी को ले जाता है आपकी एक गैर लड़का, और मंगनी फिर अगर वहां टूट गई तो लड़की बन गई जहनी मरीजा। ऐसी कहानी आप सुने कि आप कहते हैं अल्लाह की पनाह कभी मंगनी नहीं करो, करे मंगनी दूसरे दिन शादी कर दे, ये है आज के दौर का सोल्यूशन। अच्छा बास ने उसका फिर एक और हल ढूंढ दिया, चलो फिर निकाह कर देते हैं, क्या से क्या इश्यूज हैं। यदि इस वक्त वाकई हम इतनी उलझनों में पड़े हुए लोग हैं तभी तो हमारे पास अल्लाह के कामों का या अल्लाह के रास्ते में निकलने का वक्त ही नहीं है। तो यहां खितबा से समझ लीजिए कि बात करना, मैसेज दे देना, पैगाम दे देना। निसा का लफ्ज पीछे हो गया था, अकनन तुम के लफ्ज को देखिए, छुपाओगे तुम, काफ नून नून इसका रूट होता है। ये जो कन, ये आपका मेरा कान है ना, ये भी यही है। और ये जो कान होती है जिसमें नमक की कान और सोने की कान, माइंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो भी इसी से छुपाने को कहते हैं। बेसिकली कान होता है कैविटी, हर चीज का खिलाफ और पर्दा, वो जगह जहां किसी चीज को महफूज रखा जाए। और इसका ऑपोजिट होता है एलान, यो लीनून, अल्लाह ताला के साथ ये दोनों ही नाम आते हैं। तो क्या पता चला कि छुपाते हो, मुराद ये कि तुम्हारे दिल में कुछ होता है और तुम दूसरों को उसको जिक्र नहीं करते। लाताजीम लफ्ज देख लीजिए, अजम है इसमें, एक होता है इरादा, यस आई विल डू इट, एक होता है अजम, इरादे कर करके तो आपने बहुत दफा तोड़े होंगे अपनी जिंदगी में, मैंने भी बहुत से तोड़े होंगे। लेकिन अजम क्या होता है कि जब फिर इरादा टूटता नहीं है, मैंने छुट्टी नहीं करनी तो आपका ये अजम है, फिर हालात बदल जाए कुछ भी होंगे आप अपने उस काम पे जमे रहेंगे। इरादा है सुबह जाना है, ओ नहीं आंख नहीं खुली, कल से जाऊंगी इंशाल्लाह, चलो कल आई, नहीं अभी नहीं, अच्छा अब दो दिन गुजर, अब नेक्स्ट वीक से जाऊंगी। तो यहां लफ्ज के ताजीमू, पुख्ता करना, स्ट्रांग करना। जो कोई शख्स रास्ते पर बगैर मुड़े सीधा चलता जाए ना, उसके बारे में अरब लोग कहते हैं ए तजमत तरीक, यानी वो सीधे रास्ते पर चला। तो अजम आला अम्र कहते हैं किसी काम को कतई तौर पर करने का फैसला, अजीमत भी इसी से है, पुख्तगी, जम जाना। आप देखिए मेरी नजर में, मैं अपने ऊपर अपने आप को लेकर बात करती हूं, किसी इंसान की सबसे बड़ी कीमत उसके अजम से लगती है। क्वालिफिकेशन और चीज है, आपके पास क्वालिफिकेशंस कितनी है, डिग्रियां कितनी रखी हुई आपने, मास्टर्स, पीएचडी, रेंगलर, फलां फलां, आलिम की डिग्री, ये सब आपके ऊपर से लगाए हुए सबके लाके हैं। असल चीज आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत, आपके अंदर अपने काम पे अजम कितना है। और अगर आपको कभी मौका मिले ना किसी को चूज करने का, तो क्वालिफिकेशन ना देखें, अजम देख लें। स्ट्रॉन्ग लोग जिनकी पर्सनैलिटी में है अपनी बात करके निभाना होता है, वो निकम्मे भी होना सीख जाएंगे, आपको धोखा नहीं देंगे और आपका हर रोज दिल नहीं टूटेगा। लेकिन बहुत क्वालिफिकेशन वाले लोग के जिनका रास्ता ही आप देखते रहे, वो रोज आपको दुखी करेंगे, वो रोज आपको तकलीफ देंगे। तो यहां अल्लाह ताला ने इस मैसेज में यहां ये बात करके आपके मेरे लिए ये बात रख दी कि आप इस निकाह के अंदर इस तरह की बातें ना करें। अब सवाल पैदा होता है कि ये बातें सारी जो भी पढ़ी, मेरा ख्याल इसमें कोई बात भी छुपी भी नहीं है, बहुत क्लियर है। मैं दोहराती हूँ क्योंकि बस यही दो आयतें थी जो बेवकी और इसकी, लेकिन बेवा औरत के साथ या मुतलका औरत के साथ इद्दत के दौरान कोई दूसरा मर्द बराह रास्त बात नहीं कर सकता, तो कहां फिर किसी और के साथ कर सकता है, किसी तरह इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ये किसी मर्द का एक बेवा की तरफ तवज्जो रखना, निकाह का पैगाम देना, फिर इसके लिए वो बीच की सारी जो प्रोटोकॉल कह लीजिए या जो इसमें करने की सारी चीजें होती है, उसका क्या होगा, कैसे होता है? आप देखिए कि कुरान ने अल कफ कहा है ना, कफ बराबरी। एक बूढ़ी औरत है तो एक बूढ़े ज्यादा उम्र का मर्द उसमें इंटरेस्ट ले सकता है, बच्ची है तो उसके बारे में कोई जवान मर्द भी बात कर सकता है। लेकिन इस सारी बातों से आप ये नहीं समझ सकते कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, इरादे से, नियतों से हो गया है। बस अब आप देखिए यूनिवर्सल लेवल पर कुछ लोग होते हैं, वो जैसे कुछ मशहूर लोगों के बारे में किसी ने कहा कि इस पे तो हजारों लड़कियां मरती हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये ज्यादा से ज्यादा चार के साथ शादी कर सकता है। समझ रहे, कितनी को उसकी फैंस हैं। अब वो फैन हो सकती हैं, एसी हो सकती हैं, हीटर्स हो सकती हैं, लेकिन वो बीवी नहीं बन सकती। दिल में ख्याल आने को बुरा नहीं कहा जा रहा, ये फितरी बात है। बलूगत के साथ इवन, ये तो बेवकी की बात है ना, यंग लड़के लड़कियां जरूर ख्याल आता है, माँ बाप के भी दिलों में आता है, बेटी का उधर कर दूंगी, बेटे का इस भाई के घर कर दूंगी। नानियां दादियां रिश्ते जोड़ती रहती हैं, कोई कह जाती है डेथ बेड पे मेरी इस बेटी को उधर ब्याहना, उसके बच्चे के साथ ब्याहना। अब ये सारी बातें जो हैं ये होती हैं, लेकिन इसके बाद के मामले खराब हैं। किसी का किसी से मोहब्बत हो जाना ये भी गुनाह नहीं है, उसके इजहार और उसकी अगली चीजों में गुनाह है। अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाली, मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ना डालता तो दिलों में कोई तुम्हारे मोहब्बत नहीं डाल सकता। तो ये सब कुछ जो है जहां तक इंसान के बस में उस पर रहे, बाकी वो सारे मीन्स कट ऑफ कर दें जिसके जरिए से इंसान शैतान के हाथों में तरने वाला बन जाए और दूसरी बातों में दूसरी तरफ चल पड़े। अब सवाल लिखिए, अगर कोई इद्दत में निकाह कर लेता है तो उसका क्या होगा? हराम होगा, उस निकाह को तोड़ दिया जाएगा। बाज फुका कहते हैं कि फिर इद्दत गुजरने के बाद दोबारा निकाह किया जाए, और बाज कहते हैं कि नहीं, अब इनका कभी भी नहीं करना। वजह तिल का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इसके करीब ना जाओ। मतलब यह है कि चूंकि इस मर्द औरत ने अल्लाह की हद को तोड़ा है, तो लिहाजा फिर आप इसको सजा दें, ये जरूरी है इस बात में। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहां अल्लाह ताला ने दो बार एंड पे अपने जानने की बात की है, इसकी क्या जरूरत थी? इन्नल्लाह यालमु, यन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम, फिर वालमु का लफ्ज दोबारा आया, क्योंकि असल बात यही बंदे को गुनाह से रोकती है कि अल्लाह मुझे जानता है, अल्लाह अपने इल्म की वजह से अपनी जात से डरा रहा है। देखिए जिस चीज के बारे में आपको डर हो ना, किसी को पता ना लग जाए, मान लीजिए वो गुनाह। ये कोड वर्ड लगा के रखने, ईमेल का पासवर्ड क्या है, फेसबुक की फलान आईडी क्या है, ये कौन छुपाते हैं? जिनके दिल में चोर होता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं। तो ऐसे सब लोग सोच लें कि अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम। एक बहुत ही खूबसूरत किसी ने आर्टिकल छोटा सा भेजा था, यही सेल फोन्स के बारे में था, कि कई लोग हैं ऐसे आज के दौर में कि कयामत के दिन उनके सेल फोन्स उनके खिलाफ चार्जशीट्स बन जाएंगे। हर क्लिक और हर पुश से पहले सोचो कि ये मेरा जन्नत की तरफ लेके जाएगा या जहन्नम की तरफ। अब तो उन्होंने क्या क्या आपके लिए इंतजामात भी कर दिए कि पासवर्ड कोई आपसे पूछ भी ले। एक कोई क्लिप में देख रही थी मैं कि शायद मियाँ सो रहा है तो बीवी जबरदस्ती उसका फोन पकड़ के अब उसको कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, और आपको पता है कि एक दो से ज्यादा ट्राई करी तो वो वैसे ही बंद हो जाता है। फिर वो सोते में ना उसके अंगूठे पकड़ पकड़ के लगा रही है, आपको पता है थंब के साथ है उसकी पूरी, ये 10 की 10 उंगलियां उसने लगा ली, लेकिन नहीं हुआ ना तो एकदम गुस्से में फेंक के जाती है। तो जो ही वो बाहर जाती है तो वो मियाँ जो जान के बेचारा मिसना बना हुआ था कि मैं उठूंगा तो पूछेगी, तो वो उठ के बाहर गई है ना तो अपने पाँव का अंगूठा लगा के खा लेते। यानी मैं सोच रही थी कि आज सिर्फ साल पहले भी शायद ये इशू कभी ना था। अच्छा वो सो रहा है तो उसको बेहोशी में उसके कुछ बोल रही है कि ये अपनी नींद में ही वो पासवर्ड बोल रहे, तो आलम अल्लाह यालम माफी अनफसिकुम, सिर्फ अल्लाह का खौफ मुझे आपको रोक सकता है, ना किसी इंसान का, ना शोहर का, ना बीवी का, ना बच्चों का, फलां का। तो और आखिर में देखिए अल्लाह गफूरन हलीम, अल्लाह बख्शता है। और वाकई शोहर नहीं बर्दाश्त करता बीवी की ऐसी हरकत अगर पता लग जाए, बीवी तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती शोहर की अगर वो कोई करे, बच्चे नहीं करेंगे माँ बाप की, माँ बाप नहीं बच्चों की बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो है गफूरन हलीम, बख्शता भी है। और हलीम लफ्ज किसको कहते हैं? बुर्दबार। आपने उर्दू में एक लफ्ज सुना है बुर्दबार, क्या मतलब होता है इसका? बार क्या होता है? बोझ को, तो बुर्द बर्दाश्त, बुर्दबार वो शख्स है जो बोझ को बर्दाश्त कर ले, पहाड़ गुजर जाए, गालियों की यलगार है, तूतकार हो रहा है, मियाँ गुस्से में फटक रहे हैं, जो भी बीवी बुर्दबार बनी बैठी है, कुछ भी नहीं कहा मुझे इसने, और सेम थिंग बीवी के आगे। ये इतनी बड़ी खूबी है कि वाकई बंदा घुल मिल जाता है, और ये अल्लाह की खूबी हमें अपने अंदर लानी है। तो लिहाजा अगर कभी किसी की कोई बात पता चले तो आप उसको तहम्मुल से बर्दाश्त करें, लेकिन गुनाह पे उसको माइल ना करें। अल्लाह सुबहाना ताला बंदे की बहुत सारी बातें बर्दाश्त करके उसको मौका देता है तौबा का। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा अपने आप को खुद ठीक कर ले, और अल्लाह वाली सिफात जब बंदों में आ जाएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। जी आप
जबरदस्ती तो नहीं है ना, अगर बेवा को निकाह नहीं करना चाहिए।
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अल्लाह सुबहान तआला ने खुद का वला जुनाह अलैकुम, तुम पे इस पे कोई गुनाह ही नहीं है, किस बात का? कि जो वो अपने बारे में फैसला करें। एक औरत मियां की वफात के बाद क्या निकाह जरूर करें, ये सवाल बना ले, तो जवाब लिखिए ये डिपेंड करता है हालात पे। एक तरफ तो हमें हदीस में पता चलता है कि 3 चीजों में जल्दी करो, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जब 3 काम हो जाएं तो जल्दी करो। नंबर 1 फर्ज नमाज, उसकी अदायगी में जल्दी करो। फिर दूसरी बात है कोई फौत हो जाए तो उसके कफन दफन में जल्दी करो, क्योंकि नेक है तो तुम्हें कोई हक नहीं उसको उससे रोकने का उसकी मंजिल से, और बद है तो तुम उसको जल्दी से पहुंचाओ, कहीं उसके हिस्से का अजाब तुम्हारे घर में ही ना आ जाए। तीसरा, वो औरत या मर्द जिसका साथी मर जाए या बिछड़ जाए, वही रांड बोलते हैं ऐसे लोगों का, अय्यम बोलते हैं, सूरत नूर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वन केहुल अय्याम मिनकुम, तो अय्यम कहते हैं बेजोड़, अकेला। हमारे यहाँ उसके बारे में क्या लफ्ज बोलते हैं? छड़े या रांड बोलते हैं मर्दों के लिए, यानी जिसकी बीवी या मर्द ना रहे तो उसके दूसरे निकाह में। एक तरफ तो ये हुक्म है और असल हुक्म यही है, लेकिन अब एक औरत है बेवा, बच्चे भी हैं साथ, अब लोग कहते हैं शादी करो, वो कहती है नहीं मुझे पहले बच्चों को देखना है, वो अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करती है कि दूसरा कोई मर्द हो सकता है मेरे बच्चों को ना देखे, या बेटियां हैं जंग घर में तो उसको खतरा है कि घर में एक मर्द आ जाएगा, पता नहीं मेरी बेटियों का वो बाप भी बनता है कि नहीं। फिर उस औरत के ऊपर है, अगर वो अपने नफ्स में चाहत पाती है, तलब है, और उस तलब की वजह से किसी गुनाह का शिकार होती है, फिर तो कर लेनी चाहिए। लेकिन ऑपोजिट दूसरी हदीस भी, वो औरत जिसने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने आप नफ्स को रोक लिया तो वो क्यामत के दिन बहुत दर्जे पाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है।
वो निगाह नहीं करती तो अगर बच्चों को पाल रही है तो उसे सादगी भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे इद्दत के दौरान।
नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये एक बड़ा मसला है, ये इन्होंने बड़ा अहम सवाल किया, मैं ये जरूर इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। आप देखिए हमारे यहाँ बेचारी वो जिसका मर गया, चले वो तो मरा, 4 माह 10 दिन खत्म, उसके बाद क्या कहते हैं? शादी आ गई खानदान में, साल बाद सारी भाभियों ने अच्छे कपड़े बनाए, उसने भी बना लिए, तो लोग क्या कहते हैं? इसने किसको दिखाना है, कहते हैं ना। अब मैं कड़वा सा जुमला फिर बोलूंगी कि जो शादीशुदा पहन रही है वो किसको दिखाने के लिए पहन रही है? मर्दों को तो कोई कम ही औरतें दिखाती हैं। आप ऐसे कितनी औरतें जो अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए 50,000 का सूट बनाने को तैयार है। आपने कहा ना वो 50,000 का जोड़ा ही बनाना है, मैं कुछ और ना ले लूं, ये तो देखते ही नहीं। कितनी शादीशुदा औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के लिए बनाती है। आप कपड़े कब बनाती हैं? जब आपका दिल करता है मियाँ को दिखाने हैं, नहीं, शादी आ रही है। और तीसरी बात, यंग बच्चियां, कुंवारी बच्चियां किसको दिखाने के लिए पहनती हैं? तो एक अनमैरिड लड़की, बगैर शौहर वाली लड़की, अच्छे से अच्छा पहने, तो एक औरत जिसका शौहर मर गया वो बेचारी बिल्कुल ना पहने, वो कहे हाँ इसने अपने बच्चों को दिखाना है। मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ, वो कहती है हम अपने बच्चों को दिखाने के लिए पहनते हैं, फिर बच्चे खुश होते हैं, वरना माँ डिप्रेस है, दुखी है। लेकिन वही फिर बात है कि फिर पर्दे हिजाब के अंदर, बेहयाई बेपर्दी, एक औरत औरतों में रह के जो मर्जी पहने रखे।
जब कोई फोर्स हो जाता है तो जो यहाँ से हम लोग मैयत पाकिस्तान लेके जाते हैं तो उसमें भी बेवा औरत के लिए क्या?
वो साथ जाती है और फिर वापस आती है?
जी, या वो साथ जाए ना जाए,
नहीं जाना चाहिए। हुक्म है कि जिस औरत का मर्द जहाँ फौत हो उसको वहीं रहना है इद्दत के दौरान। देखिए हमारे अपने खानदान में एक ऐसा इशू बना था कि स्पेन में एक फैमिली रहती थी, बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान आए, ज़ाहिर है बच्चे भी आए होंगे, खुद भी मियाँ बीवी भी आए। अभी शादी में शायद 1 हफ्ता 10 दिन थे या 2 में तो थोड़े दिन थे, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब आप सोचिए कितना बड़ा इम्तिहान है, अब करें तो क्या करें? अब सवाल है, वो नहीं खानदान से, पूरी दुनिया से इधर उधर से जो भी रिश्तेदार होते हैं वो पी आ चुके थे। खैर अब क्या करें, शादी करनी तो है, शादी तो होगी 10 दिन 8 दिन, भाई अल्लाह ने कहा 3 दिन के बाद शादी कर दो। अब वो माँ क्या करे बेटे की शादी के लिए? तो उसको शादी है लेकिन वो पहन ओढ़ नहीं सकती, वो सच समझ नहीं सकती, बात समझ गए ना? ये अल्लाह के हुक्म है। आप मुझसे सवाल पूछ लें या मैं खुद ही बता लूं क्यों। आप देखिए जब लॉजिकली साइंस को या आज के कल्चर को देखे, लोग तो कहेंगे नहीं देखो ना एक औरत है उसका शौहर मर गया, फिर तो उसको खुश रखो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको वर्ल्ड टूर पे ले जाओ, अच्छे कपड़े पहने, खुश रहेगी, ये कहते हैं ना, ऐसे ही है ना, इसको खुश रखो, बजाय इसके कि आप उसको घर में बंद कर दें, फिर अच्छे कपड़े नहीं पहनने, फिर तो वो दुखी रहेगी। ये सवाल आ सकता है ना? तो इसका जवाब, हम जो पहनते उड़ते हैं ना, जो हमारा हाल उलिया है, इसी से हमारे जज्बात उपड़ते हैं। आप सब देखें जब आप घर में काम कर रही होती हैं, माशाल्लाह सफाई सुथराई का, कपड़ों पे गंदगी गिर रही है, जो भी है, पसीने भी आ रहे हैं आपके, टिट्स होके मूड कैसा होता है उस वक्त? काम काम काम, सादा मूड। उस वक्त कोई रोमांस को दिल करता? बच्चा भी हाथ लगाएगा तो आप कहेंगे पीछे हो जाओ मैं अपनी जान से बेजार हूँ, ऐसे ही है ना। अच्छा अब आप दूसरे चॉइस ले रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने सजे, चाहे आप अपनी दोस्तों के लिए पहने, चाहे आप दूसरों को दिखाने के लिए पहने, मूड कैसा हो जाता है? फिर उस दिन मियाँ को बार बार फोन क्यों करते हैं, आज भी आप देर से आ रहे हैं? तबीयत बदल जाती है। अल्लाह ने एक बेवा औरत को आराइश रिवाइश से रोककर हर रोज के लगने वाले झटकों से बचाया, एक बात। दूसरी बात देखिए कि ये जो हमारा कल्चर, यानी कल्चर से मेरा ये वेस्टर्न कल्चर, तो मैं नाम से ही कहती हूँ, हम मुसलमानों का ये जो कहते हैं ना, दुख है तो उसको उधर ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, इसको घुमाओ फिराओ, खुशी इससे नहीं मिलती। आपका दिल उदास हो ना तो आप नियाग्रा फॉल के पास चल जाएं, आप एफल टावर के ऊपर वाले चोटी पे बैठा है, आप फिर भी रो के ही आएंगे। वो कहते हैं ना कि दिल तो मेरा उदास है, शहर क्यों जड़ा हुआ है? खुशी आपको मिलती है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्ना कुलूब। दूसरी एक और हिकमत, जब एक औरत का हस्बैंड चला जाता है, वो घर जहां वो रही होती है, हो सकता है उसी घर में वो शादी करके आई हो, आज उस घर से उसका मियां गया, वो उसके जहन में पूरी रील चल रही होती है। मैंने खुद ऐसी औरतों से पूछा, वो कहती है हमारा दिल करता है कि हम सोचे, अच्छा ये जो हुक्म है कि उस घर से ना निकालो, उसको उधर ही छोड़ दो, वजह देखिए ना, शौहर क्या उसकी चीजों से प्यार हो रहा है, यहां बैठते थे, यहां खाते थे, यहां सोते थे, ये था वो था, ठीक है आप उठा के उसको भी निकाल देते हैं, चलो भाग जाओ फालतू सामान की तरह, अब दूसरी जगह जाके वो और लॉस्ट होगी। तो ये रिहैबिटेशन का टाइम है, 4 माह 10 दिन क्यों है, ये भी सवाल पूछ लें अगले में, अब और भी आने मसला। देखिए कि बेवगी का झटका तलाक के झटके से ज्यादा होता है, औरत तैयार नहीं होती, बाद दफा अचानक मौत होती है, बाद दफा मोहब्बत ही इतनी है और फिर जुदाई हो गई, चोट ज्यादा लगेगी। इस पे पूरी पिछली सालों की क्लासेस में मैंने कई मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के सुनाई हुई है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि एक औरत के लिए कौन सा सदमा कितना टाइम लेता है उसको सेटल डाउन होने के लिए। सबसे ज्यादा एक औरत को जो चोट पड़ती है ना, वो शौहर की मौत से पड़ती है। نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیاں تھیں، کسی جنگ میں ان کے باپ بھی گئے، بھائی بھی گئے، بیٹا بھی گیا، شوہر بھی گیا، ایک ایک کر کے خبر آتی گئی، باپ فوت ہو گئے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں آج کہوں گی کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں. پھر بھائی کی خبر آ گئی، کہا اچھا انا للہ انا الیہ راجعون، آج مجھے یہ اعزاز مل گیا کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں. سب بھی خوشی سے کہتی رہی، اور جب خبر آئی کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو چیخ ماری، گر گئی، بے ہوش ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کے لیے مرد کی ایک الگ ہی بات ہے، یہ وہ جوڑا ہے جو دن دن کر کے ایک ایک قطرہ قطرہ بنتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے عورت پہ بہت احسان کیا. ٹھیک ہے، باقی صرف عدت کے دوران ایک آرٹیفیشل قسم کا پردہ کرنا اور چھت بھی نہیں دیکھنی، آسمان نہیں دیکھنا. میں نے 60 سال سے بھی اوپر کی عورتوں کو عدت میں اتنے جھنڈ نکال کے، گھونگھٹ نکال کے، اپنے ایون بچوں کی عمر کے چھوٹے بچوں سے بھی بار پردہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جس دن عدت ختم، سمجھے وہ سب کچھ ختم ہونے کا بھی ایک سیلیبریشن ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام آپ کو ایک سوچ دیتا ہے. اور پھر تنہائی میں پڑھنا، اچھی باتوں کا کرنا، ایک عورت اگر مرد نے اس کو سکھایا تھا، اچھے مرد بیویوں کو سکھاتے تھے، واللہ ہی نبی نے اپنی بیویوں کو سکھایا تھا، تو وہ پھر عورت جو بھی نیکی کرتی ہے وہ شوہر کا صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ ساری پابندیاں لگا کر اللہ تعالیٰ نے عورت کو دوسری چیزوں سے روک دیا اور ان ساری چیزوں میں رکھا. اب اس کے علاوہ ہمارے کلچر میں لو جی ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، ابھی تو یہ ہو گیا، ابھی شادی کی باتیں. وہ میں نے پہلے بھی شاید کہیں سنایا ہوگا کہ ایک عالم دین تھے، تو ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، تو دوست ساتھی پرسے کے لیے آنے جانے والے آتے رہتے ہیں. تو جن دوست نے یہ کہانی سنائی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی وجہ سے جا نہیں سکا فوری. ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، پھر تیسرا بھی گزر گیا، تو میں چوتھے دن گیا کہ چلو میں جاتا ہوں، پوچھتا چاہتا ہوں ان کے گھر کا پتہ لیا، پہنچ گیا. کہتے جب گھر دیکھو تو وہی ہے، بٹ گھر میں گیا یا ادھر وہاں اس کے ارد گرد مجھے کوئی غم ایسی فیلنگ نہیں آ رہی کہ یہ میت والا گھر ہے، بلکہ مجھے خوشی کا احساس ہو رہا ہے. خیر قصہ مختصر، جب وہ بات کر کے اندر گئے پتا چلا کیا یہی گھر ہے، یہی ہے. کہا کہ میں نے کچھ سنا تھا، شاید میں نے غلط سنا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اتنے پریشان کیوں ہیں، تو کہا نہیں غلط نہیں سنا، میری ہی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج چوتھا دن ہے اور ہم اپنے داماد کا رشتہ شادی آج اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہی گھر ہے. اب 3 دن سوک کے پورے ہو گئے ہیں، اب چوتھا دن شروع ہے، اب ذرا آپ رکھیں اپنے اوپر. ہمارے تو 4 مہینے تک کیا کہتے ہیں یہاں، بے سوک. میں نے کہا یہ سوگ ہے، بے سوک بے سوگ ہے. آپ دیکھیں 6-6 مہینے تک لوگ سوگ پہ آتے ہیں، آپ ذرا امیجن کریں. ہاں آپ آج یہ فتویٰ لے کے باہر تو جائیں، وہ تو ہمارے شیشے توڑ دیں آ کے کہ آپ ہماری عورتوں کو خراب کر رہے ہیں، چوتھے دن آپ وہاں جا کے شادی کی بات کر رہے ہیں. اتنے آج ہم اسلام سے دور ہو گئے، تبھی خوش نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ہم ریئلسٹک نہیں رہے، پھر باتیں تبھی گڑبڑے شروع ہو جاتی ہیں. اللہ نے چوتھے دن ایک مرد کا گھر بسا دیا، کوئی بری بات ہے؟ اور کیا شادی صرف جذباتی تعلق ہوتا ہے؟ بوڑھا ہے، بیمار ہے، پھر آپ دیکھیں جس بیچارے کی بیوی فوت ہوتی ہے تو وہ غریب کو پھر بہویں، وہ کہتی تم لے جاؤ، وہ کہتی تم لے جاؤ، میرے سے نہیں رکھا جاتا، میرے سے نہیں رکھا جاتا. بوڑھی ساس بوڑھے شوہر کو سنبھال لے گی، اور اپوزٹ بھی ہے، بوڑھا سسر بوڑھی ساس کو سنبھال لے گا، جوان بہو بیٹیاں، بیٹیوں کو تو چھوڑ دیں، بہوؤں پہ بوجھل ہو جاتا ہے، گننے لگ جاتے ہیں اب تیری باری ہے، اب میری باری ہے. ایک ماں جس نے 6 بچوں کو پالا ہوتا ہے، 6 بچے مل کے اس ماں کو نہیں پالتے جب میاں نہ رہے، عورت ویسے ہی مینٹلی خراب. تو آپ بوڑھی ماں کی شادی کرا دیں، دیکھیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، آپ کے باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں کی بات کر رہی نا، بیٹوں کو لگا باپ کا انتقال ہوا، ساس ہے گھر میں، اب ساس کیا کریں گی؟ پہلے بڈھی بڈھا آپس میں لڑتے تھے، اب بڈھا تو رہا نہیں، تو وہ بڈھی نے پھر آپ کی بڈھیوں سے لڑنا ہے نا. تو آپ کسی بھی معتبر خاندان کے شوہر سے اپنی ماں کا نکاح کرا دیں، ہے ہمارے کلچر میں؟ توبہ توبہ، اس پہ نہیں. ہاں جوان بیٹیاں گندے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں سو کے، تو بوڑھی ماں ہے اس کا نکاح، کیوں آپ اپنی بہوؤں کے لیے مشکل ڈالتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ کلچر توڑنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں نام کے، لیکن ہم اصل میں نہیں. لوگ کہتے لو اب یہ شادی کی عمر ہے، تو بھائی آپ کی ہم کسی جوان سے تو نہیں کر رہے، کسی بوڑھے سے ہی کر رہے ہیں. کئی بوڑھے پڑے رہتے ہیں گھروں میں، آپ دیکھیے اپنے ارد گرد خاندانوں میں دیکھیں، آپ کو بیسیوں بوڑھے اور بوڑھیاں ملیں گے کہ جن کی ٹیک کیئر کوئی نہیں کر پا رہا، اور وہ دونوں الگ الگ ہیں. تو آپ دونوں کو ایک جگہ کر دیں، کم از کم چلے 2 بوڑھوں پہ جو خدمت کا وقت لگ رہا ہے وہ ایک ہی گھر میں لگ جائے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ کہتی ہے کہ بہوؤں کا تو حق نہیں، حق نہیں لفظ تو آپ کو فرض بولنا تھا بیسیکلی، میں آپ کا سوال کہہ دیتی ہوں صحیح کر کے. یہ کہتی ہے کہ بہوؤں کا تو فرض نہیں ہے نا کہ وہ بوڑھے ससुराल को देखे, ये तो बेटों का है, तो वहां अपने शोहरों को ये हक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। बात समझ रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कह दूं, ये जो इंसानी मामलात में, इसमें कभी फतवा नहीं चलेगा, ये तकवा के साथ चलेगा, तकवा वाले ही करेंगे। हमारा दीन वो है जो साथ हमसाए क्या दूर पार के लोगों को भी अच्छी खिदमत करने का, उसका ख्याल करने का, उसके ऊपर बातें करने का करेगा। बात समझ गए? क्या वो एक घर में रहने वाले और आपके शोहर के माँ बाप की खिदमत नहीं करने का हक देगा या फर्ज करेगा? बात समझ गए आप लोग? ये बातें ना अदालतों में होती है। मैं आगे आप जब जिंदगी रहेगी सूरह मायदा के शुरू में बताऊंगी कि कुछ अहद जो होते हैं ये मॉरल होते हैं, कुछ समाजी होते हैं, सोशल होते हैं, कुछ अखलाकी वादे होते हैं। अच्छा, आप माँ बाप के ऊपर कहाँ अल्लाह ने लिखा है बच्चों की खिदमत करें, पैदा होते बच्चे को किधर रह के इनका ख्याल करें? ये फितरत में गुंधे हुए अहद है कि बच्चा होगा तो माँ बाप ने उसकी टेक केयर करनी है, तो ये भी फितरत में लिखा हुआ है कि माँ बाप बूढ़े होंगे तो उसकी खिदमत करनी है। तो फर्ज ना निकाल दें तो आप सब कुछ ही निकल जाता है। ये तो बस अपने ऊपर आने की बात है, ठीक है? आप एक्सपेक्ट ना करें, हाँ आप मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इतनी मजबूर करके जो खिदमत कराई उससे बेहतर नहीं कि आप कोई प्रॉपर इंतजाम कर लें अपना, कोई अच्छे तरीके से इंतजाम कर लिया जाए। तो बहरहाल ये एक बहुत दुखी मौजू है रियली हमारे कल्चर में, क्या हर दौर में ये हर जगह ही रहा। और ये बूढ़े जो होते हैं ये वैसे भी फिर आपके लिए दुआओं का एक जरिया बन जाते हैं। जो करें खुश दिली से करें, नहीं तो ना करें, करके उसको जाया ना करें और एहसान ना जतलाएं। मैंने ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि बेटियां भी उस तरह की खिदमत नहीं कर सकती। और बेटियां कहाँ करती हैं, वो तो दूसरी जगह होती हैं, करती खिदमत फिर बहुएं ही हैं। सासों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए। फिर मिजाज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दवाइयों का बोझ और फिर महरूमियों का एहसास, वही घर कल तक वो उसकी मालकन थी, अब वो घर में पोटली बन के कमरे में यम्मा का कमरा है, तो वो उसके लिए भी एक झटका होता है। फिर वो बहू का हक दे, तो ये सारी चीजें बस तब होंगी जहां अल्लाह का खौफ होगा। हम जितना अल्लाह से जुड़ेंगे, अल्लाह से जोड़ेंगे उतना इंशाल्लाह हमारी जिंदगियों में खैर आएगी। ठीक है।